पूर्व पाठ में आपने 28वीं कारिका को पढ़ा, जिसमें ये था कि शब्द नित्य हो तो भी, शब्द अनित्य हो तो भी, दोनों ही स्थिति में व्याकरण शास्त्र के द्वारा जो है ना व्यवस्था की जा सकती है। और व्याकरण शास्त्र क्या व्यवस्था करता है कि अयम शब्द साधु, अयम शब्द असाधु। प्रश्न इसमें ये था कि शब्द अगर नित्य है, मतलब फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आना है, तब तो कहा जाएगा कि हाँ ये शब्द साधु है, ये शब्द असाधु है। लेकिन जब उसको कृतक माना जाएगा, अनित्य माना जाएगा, तब तो मतलब अनित्य होगा तो फिर अब तो परिवर्तनशील होगा, हमेशा हर क्षण जो है नए नए शब्द आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो फिर हम उस वहाँ पर हम व्यवस्था नहीं बना सकते। इसी का जवाब दिया कि नहीं, नित्य है तब तो कोई बात ही नहीं, अगर अनित्य पक्ष भी है तो भी उसमें प्रवाह नित्यता रहेगी। मैंने तीन पर्यायवाची शब्द बताए थे आपको, व्यवस्था नित्यता, प्रवाह नित्यता और व्यवहार नित्यता। कहा कि और ये कैसे, तो मैंने बताया कि ये आप नहीं कह सकते, जैसे किसी प्राणी को ये नहीं कह सकते कि अयम आदि ही प्राणी, ऐसे ही किसी घट शब्द को ये नहीं कह सकते अयम घट शब्द आदि ही, तो आदि कह नहीं सकते। तो जब आदि नहीं कह सकते तो वो क्या होगा, अनादि होगा। और जो अनादि होता है वो तो नित्य ही होता है, और इस तरह से अनादि मान करके जो नित्य होता है उसी को प्रवाह नित्य कहते हैं, या व्यवहार नित्य कहते हैं, या व्यवस्था नित्य कहते हैं। तो ये चर्चा पहले हो चुकी है, आज हम 29वीं कारिका को पढ़ेंगे। नानर्थिकाम इमाम कश्चित व्यवस्थाम कर्तुमर्हति तस्मा निबध्यते नित्या साधुत्व विषया स्मृति ही। कहा कि यह जो व्याकरण शास्त्र है ये साधुत्व विषयक स्मृति है, साधुत्व विषया स्मृति ही, ये साधुत्व विषयक स्मृति है। स्मृति का अर्थ यहाँ पर शास्त्र ले लीजिए कि ये शास्त्र, ये जो व्याकरण शास्त्र है ये साधुत्व विषयक है, माने इसका विषय जो है वो साधुत्व असाधुत्व की व्यवस्था करना है। और नित्या, यह भी जो है ना व्याकरण शास्त्र, ये भी नित्य है। आप जब आप लोग पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं तो जब पाणिनि ने लिखा तब से पाणिनि व्याकरण चला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले व्याकरण नहीं था, उससे पहले भी व्याकरण था। जब से सृष्टि है तब से संस्कृत भी है और तब से व्याकरण शास्त्र भी है। हाँ, इस समय में पाणिनि व्याकरण को मान्यता मिली हुई है, सब लोग पाणिनि व्याकरण को स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे पहले भी जो है व्याकरण थे। अगर ऐसा नहीं मानेंगे ना तो वेदांग जो छह प्रकार के मानते हैं उसमें मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को मुख रूप माना गया, वेदांग माना गया है, तो क्या होगा कि पाणिनि जब लिखे व्याकरण को तब तो वेदांग छह होंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, फिर पांच ही वेदांग मानना पड़ेगा ना, जबकि ऐसा नहीं होता, वेदांग छह है। हाँ, व्याकरण इसमें एक वेदांग, मुख्य वेदांग है। हाँ, पाणिनि ने जब लिखा व्याकरण तो क्या हुआ कि जैसे अब सूरज उगता है ना तो लाइट की प्रकाश जो है ना धूमिल हो जाती है, सूरज की का ही प्रकाश हर जगह दिखता है, उसी तरह से पाणिनि व्याकरण का उदित होने पर बाकी व्याकरण जो थे वो धूमिल हो गए। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन व्याकरण जो है ना वो ये नित्य है वेद की तरह। खैर, तो यहाँ संदेह ये किया जा रहा है कि साधुत्व और असाधुत्व व्यवस्था के लिए आपने बताया कि व्याकरण शास्त्र है, तो ये साधुत्व कौन सा शब्द साधु है और कौन सा शब्द असाधु है, ये तो हम लोक से ही हमें समझ में आ जाएगी बात, हैं, लोक परंपरा में व्यवहार में जो है ना जो विद्वान लोग जो प्रयोग करते हैं उसको देख करके समझ जाएंगे कि ये साधु शब्द है, जिसको जो है विद्वान लोग प्रयोग नहीं करते, मूर्ख लोग प्रयोग करते हैं, उसको समझ जाएंगे कि ये असाधु शब्द है। तो साधु शब्द और असाधु शब्द का ज्ञान जो है हमें तो लोक से हो जाएगा, व्यवहार से हो जाएगा, फिर व्याकरण शास्त्र की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है। उसी का उत्तर इस कारिका में बताया कि नौ अनर्थिकाम इमाम व्यवस्थाम कश्चिदपि कर्तुम अर्हति। कहा कि ये जो व्यवस्था है व्याकरण शास्त्र जो व्यवस्था बनाता है, इस व्यवस्था को कोई अनर्थक सिद्ध नहीं कर सकता, कोई इसको निरर्थक नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता निरर्थक, क्योंकि लोक के द्वारा जो आपको साधुत्व असाधुत्व का ज्ञान होगा वो कुछ ही शब्दों का होगा, सारे शब्दों का आपको साधुत्व असाधुत्व का ज्ञान नहीं होगा। सारे शब्दों का ज्ञान होने के लिए आपको व्याकरण शास्त्र की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए आप जो कह रहे थे कि लोक और व्यवहार से हम साधुत्व असाधुत्व का ज्ञान कर लेंगे, व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। न अनर्थिकाम इमाम कश्चित व्यवस्थाम कर्तुम अर्हति, ये जो व्यवस्था है इसको कोई भी व्यक्ति अनर्थक व्यवस्था जो है ना सिद्ध नहीं कर सकता। तस्मात निबध्यते, इसीलिए जो है ना इस व्याकरण शास्त्र का निबंधन किया जाता है, माने बनाया जाता है नित्या साधुत्व विषयार्थ। और यह जो है यह स्मृति है, व्याकरण शास्त्र साधुत्व विषयक स्मृति है और नित्य स्मृति है। अब तीसवीं कारिका में जो है फिर एक प्रश्न आता है कि ठीक है, आपने कहा कि लोक व्यवहार से समस्त शब्द के साधुत्व असाधुत्व का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन प्रमाण चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो इसमें जो शब्द प्रमाण है ये हो गया व्याकरण शास्त्र का शब्द प्रमाण में ऐसे वेद को लिया जाता है और वेदांग को लिया जाता है, तो वेद वेदांग हो गया शब्द प्रमाण। और ये जो अनुमान प्रमाण है ये भी तो प्रमाण है और अच्छा प्रमाण है, अनुमान प्रमाण को सब लोग मानते हैं। तो प्रश्न ये यहाँ कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि अनुमान प्रमाण से तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा जो है ना हम साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था की पहचान कर लेंगे, साधुत्व असाधुत्व का ज्ञान कर लेंगे, व्याकरण शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर जो है ना तीसवीं कारिका में कहा गया कि न च आगमाद रिते, रिते माने बिना और आगमात माने शब्द प्रमाणात, ताकि शब्द प्रमाण के बिना कोई भी व्यक्ति जो है तर्के न धर्म व्यवतिष्ठते, तर्क के द्वारा अगर कोई चाहेगा कि हम जो है धर्म और अधर्म की व्यवस्था कर लें, धर्म अधर्म की व्यवस्था मतलब कि ये शब्द साधु है और ये शब्द असाधु है, तो साधु शब्द के प्रयोग में धर्म होता है आप जानते हैं और असाधु के प्रयोग में जो है धर्म नहीं होता है। तो ये चीज जो है कि अस्य शब्द से प्रयोगे न धर्म, अस्य शब्द से प्रयोगे न धर्माभाव, ये जो व्यवस्था है यह व्यवस्था न आगमाद रीते न, आगम के बिना, आगम प्रमाण के बिना ये व्यवस्था संभव नहीं है। न तर्के न व्यवतिष्ठते, तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा ये वाली व्यवस्था जो है ना ये नहीं हो सकती। कहा कि ऋषि लोग तो ये कर सकते हैं, जो ऋषि मुनि महात्मा हैं उनके पास जो है अलौकिक दृष्टि होती है, वो तो अतींद्रिय वस्तु का भी ज्ञान कर लेते हैं। अतींद्रिय वस्तु मतलब इंद्रिय से जिस वस्तु का ज्ञान न हो ऐसी वस्तु का भी ज्ञान कर लेते हैं। अब जैसे मान लो आकाश में कोई चीज है, आंख से यहाँ से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऋषि लोग जो है ना उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो अतींद्रिय, अब दीवाल बीच में अगर है, दीवाल के उधर कुछ है रखा हुआ, उसको हम यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन ऋषि लोग जो है ना उसको भी देख लेते हैं, तो उनको सूक्ष्म ज्ञान रहता है। तो जो इंद्रिय से जिसका ज्ञान नहीं होता उसका भी वो लोग सूक्ष्म ज्ञान जो है ना उनके पास रहता है, ऋषियों के पास। तो कहा कि ऋषि लोग भी कर सकते हैं इसको, तर्क से, अनुमान से जो है ये व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसका, उसके लिए कहा कि ऋषिनाम अपि यज ज्ञानम, ऋषियों के भी जो ये अतींद्रिय ज्ञान है वो ज्ञान भी ऐसे नहीं है। तदपि आगम हेतुकम, उसमें भी हेतु जो है, कारण जो है वो आगम प्रमाण ही है, शब्द प्रमाण के कारण ही जो है ऋषियों को वो अतींद्रिय ज्ञान हो पाता है। तो शब्द प्रमाण के द्वारा ही जो है ना हम ये निर्णय ले सकते हैं यह साधु है और असाधु है, तर्क के द्वारा अथवा तर्क अर्थात अनुमान के द्वारा जो है ना ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस तरह से लोक के द्वारा नहीं हो सकता, तर्क के द्वारा नहीं हो सकता, इन दोनों के बातों को बताया। और ये किससे व्यवस्था बनेगी, तो आगम प्रमाण से व्यवस्था बनेगी। आगम प्रमाण मतलब वेद वेदांग के द्वारा जो है ना ये व्यवस्था बन पाएगी। अब इसी बात को और दृढ़ करते हैं 31वीं कारिका में कि ये जो कहा ना अभी कि अनुमान के द्वारा आप नहीं कर सकते और लोक के द्वारा नहीं कर सकते, इसी बात को और यहाँ पर दृढ़तापूर्वक बता रहे हैं कि धर्मस्य च अव्यवच्छिन्नाः पंथानो ये व्यवस्थिताः न तान लोक प्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केन बाधते। कहा कि धर्म का जो ये अव्यवच्छिन्न पंथा है, पंथा माने मार्ग और अव्यवच्छिन्न मतलब विच्छेद रहित, है, जिसमें बीच में जो है ना खंड न हुआ हो, सतत चलने वाली जो प्रक्रिया हो, जिसको आप सनातन करते हो। तो धर्म का जो सनातन पंथा है, धर्म का जो सनातन मार्ग है, और वह मार्ग जो व्यवस्थित है, उस व्यवस्थित धर्म के मार्ग को नौ तान लोक प्रसिद्धत्वात् कश्चित तर्केन बाधते, लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर कोई उस व्यवस्था को जो है ना तर्क के द्वारा बाधित नहीं कर सकता। अब इसको उदाहरण के द्वार पर आप समझ सकते हैं कि लोक में हिंसा को जो है ना पाप माना गया है, पाप कारक माना गया है, अधर्म कारक माना गया है, लेकिन शास्त्र कहता है, आगम प्रमाण कहता है कि तरति ब्रह्म हत्याम योश्वमेधेन यजेता, माने ब्रह्म हत्या को भी व्यक्ति जो है ना पार कर लेता है जो अश्वमेध के द्वारा यज्ञ करता है। ऐसे ही वायव्यम श्वेत पशुम आलभेता, इसमें भी जो है ना पशु के आलभन का विधान किया गया है वेद में। तो यज्ञीय हिंसा जो होती है, वह यज्ञीय हिंसा मतलब यज्ञ में की जाने वाली जो हिंसा है, वह लौकिक दृष्टि से तो पाप कारक है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, आगम प्रमाण की दृष्टि से वह पाप कारक नहीं है, वह जो है धर्म कारक ही है। तो इसलिए लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर आप तर्क करेंगे कि लोक में चूंकि ये पशु हिंसा जो है ना वह धर्म कारक नहीं है, इसलिए शास्त्र में जो बताई गई है हिंसा, वो हिंसा भी धर्म कारक नहीं होगी। इस तरह से जो आप तर्क करेंगे लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर, तो वो सही नहीं बात बैठेगी। जो वेद के द्वारा हिंसा प्रतिपादित की गई है, यज्ञीय हिंसा जो बताई गई है, उस हिंसा में धर्म ही होता है, पाप नहीं होता। अब 32वीं कारिका को देखते हैं, तो 32वीं कारिका में बताया गया कि अवस्था देश कालानाम भेदाद भिन्नासु शक्तिषु भावानाम अनुमानेन प्रसिद्धि अति दुर्लभा, ताकि लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर जो है ना आप निर्णय नहीं ले सकते धर्म और अधर्म का। देखो ऐसा है ना कि अनुमान कहाँ काम करता है या लौकिक प्रसिद्धि कहाँ काम करता है, जहाँ पर प्रत्यक्ष हो। परोक्ष वस्तु के लिए ये सारे प्रमाण जो है ना फेल कर जाते हैं। परोक्ष वस्तु की सिद्धि जो है ये इन प्रमाणों के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा, उपमान के द्वारा, अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता। परोक्ष वस्तु की सिद्धि जो है केवल और केवल शब्द प्रमाण के द्वारा, आगम प्रमाण के द्वारा ही सिद्धि हो सकती है। इसीलिए ईश्वर की सिद्धि करने के लिए आपको अगर बताया जाए तो उसको आप जो है ना कैसे करोगे, ना प्रत्यक्ष प्रमाण काम आएगा, ना उपमान प्रमाण काम आएगा, ना अनुमान प्रमाण काम आएगा, आपको वेद प्रमाण ही देना पड़ेगा ईश्वर की सिद्धि में। तो जो ये धर्म अधर्म की जो व्यवस्था है, ये साधुत्व असाधुत्व की जो व्यवस्था है, ये भी परोक्ष वस्तु है, और ये व्यवस्था भी जो है ना व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही हो सकता है, शब्द प्रमाण के द्वारा ही हो सकता है। इसी के लिए कहते हैं कि अवस्था देश कालानाम भेदात, ताकि अवस्था के भेद से, आयु के कारण, फिर देश के कारण माने जगह के कारण, और कालानाम काल के कारण, समय के कारण जो है पदार्थ की शक्तियां जो है ना वो भिन्न भिन्न हो जाती हैं। आप देखिए कि आप जब बच्चे थे तो आपके शरीर में कम ताकत थी, वहीं जवान हुए तो आपके शरीर में जो है ना ज़्यादा ताकत आई, वहीं बूढ़े हो जाएंगे तो उतनी ताकत नहीं रह जाएगी। आप तो आप ही हैं, बचपन में भी आप ही थे, जवानी में भी आप ही हैं, बुढ़ापे में भी आप ही हैं, लेकिन अवस्था के भेद से जो है ना आपकी शक्ति में अंतर आ गया ना। इसी तरह से देश के भेद से भी जो है पदार्थ की शक्ति में कमी आती है या पदार्थ की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। अब आज ही देखिए कि बॉम्बे में जो व्यक्ति हैं उनको ठंड नहीं लगती है, और कश्मीर में जो है व्यक्ति को ठंड लगती है। तो अब तर्क कोई करेगा कि ये 1 दिसंबर के दिन चूंकि कश्मीर में ठंड लग रही है, इसलिए बॉम्बे में भी ठंड लगती होगी, अनुमान इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। है, क्योंकि देश के भेद से भी जो है पदार्थ की शक्ति में अंतर आता है। इसी तरह से काल के कारण होता है, आप जानते हैं सब, आप सब लोग खेती पथारी को जानते हैं, कृषक का कार्य जानते हैं, तो कोई कोई फसल जो है इस महीने में ही फलेगी, इससे पहले नहीं फलेगी, उसके बाद नहीं फलेगी, ऐसा क्यों होता है? पौधा तो रहता ही है लेकिन वो निश्चित समय पर ही फलता है, अनिश्चित समय पर नहीं फलता। तो अवस्था भेद से, देश भेद से, काल भेद से पदार्थों की शक्तियों में भेद होता है, भिन्न भिन्न शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए नौ भावानाम अनुमाने न प्रसिद्धि, इसलिए भावानाम माने पदार्थानाम, पदार्थों की शक्तियों का अनुमान जो है आप तर्क के द्वारा या अनुमान के द्वारा शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके बारे में व्यवस्था नहीं बना सकते, शक्ति के का नियमन आप नहीं कर सकते। वही कहा कि अति दुर्लभा, अनुमान के द्वारा पदार्थों की शक्तियों को आप निर्धारित नहीं कर सकते, वह अति दुर्लभ है, मतलब वह संभव नहीं है। इस तरह से आपको जो है ना ये आगम प्रमाण मानना ही पड़ेगा, साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था के लिए न लोक प्रसिद्धि से कर सकते हैं न ही तर्क के द्वारा कर सकते हैं। अभी और भी जो है ना एक दो कारिकाएं इसके बारे में आएगा कि अनुमान प्रमाण से धर्म अधर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, साधुत्व असाधुत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती, इसके लिए आगम प्रमाण ही चाहिए। और जो कि मैंने सूत्र में बताया आपको कि लौकिक जो ये प्रत्यक्ष जो वस्तु है, प्रत्यक्ष जो पदार्थ है, उसकी सिद्धि तो हो सकती है अनुमान प्रमाण से, लेकिन जो परोक्ष पदार्थ है जैसे कि धर्म अधर्म है, साधुत्व असाधुत्व है, इसकी व्यवस्था तर्क से नहीं हो सकती। तो बाकी जो कारिकाएँ हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे, आज का पाठ यहीं रखते हैं।